अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बिबिटी संस्थापक आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अध्याय का शीर्षक है विराट रूप। तो मेरे पीछे आप पुनरावृत्ति कीजिए। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। भवाप्यो हि भूताना श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। वाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष शब्दार्थ भव उत्पत्ति अप्ययो लय प्रलय ही निश्चय ही भूतानां समस्त जीवों का श्रुतो सुना गया विस्तरशः विस्तार पूर्वक मया मेरे द्वारा त्वत्तः आपसे कमलपत्राक्ष हे कमल नयन महात्म्यम् महिमा अपि भी च तथा अव्ययम् अक्षय अविनाशी। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे कमल नयन मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। कृपया दोहराइए, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य, अर्जुन यहां पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्ततः। मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक रहते हैं, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भलीभांति समझ लिया है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता का एक 11वां अध्याय हम पाठ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है विराट रूप। हम सभी ने वो प्रसिद्ध चित्र देखा होगा, भगवान का विराट रूप। भगवान महाभारत के युद्ध के पूर्व अर्जुन को गीता का उपदेश दिए और इस उपदेश के दौरान भगवान अपना विराट रूप प्रदर्शित किए, तो वही इस अध्याय का विषय है, तो हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि या ये समझेंगे कि भगवद गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहे हैं, शुरुआत में ही पहला श्लोक, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो कहे हैं भगवान के ये जो है ज्ञान, इदम तुते गुह्यतमम, सीक्रेट, सीक्रेट मतलब गुह्य, कंपैरेटिव डिग्री में गुह्यतर, मोर सीक्रेट, और मोस्ट सीक्रेट मतलब सुपरलेटिव, गुह्यतमम। तो भगवान जो गीता में ज्ञान दे रहे हैं वो गुह्यतमम ज्ञान है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, द मोस्ट, द बिगेस्ट सीक्रेट। भगवत गीता को राज विद्या कहा गया है दूसरे श्लोक में, राज विद्या राजगुह्यम, तो सभी विद्याओं का राजा कहलाता है भगवत गीता। हम देखते हैं आजकल फैशन है कि स्पिरिचुअल टॉपिक, मतलब लोगों को लगता है ये सेंटिमेंटल बात है, भावुक, भावुकता है ये। आजकल तो हाईटेक साइंस का जमाना है, तो आजकल तो ये सब आउटडेटेड है ना। तो एक्चुअली जो बड़े बड़े लोग हुए हैं संसार में, वो लोग जानते हैं भगवत गीता का वैल्यू। जैसे हम अभी 11th चैप्टर देख रहे हैं, 11वां अध्याय देख रहे हैं भगवत गीता का, तो आपको जान के आश्चर्य होगा और अच्छा लगेगा कि विश्व के प्रमुख व्यक्ति भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, करते रहे हैं और करते हैं। जैसे 1945 में, 1945 लगभग उस दौरान जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो अणु बम की खोज हुई थी, एटम बॉम्ब, तो उसके पीछे जो वैज्ञानिक थे, काफी एक बड़ी टीम उसके पीछे काम कर रही थी, तो उसके जो लीड थे उनका नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो जब इसका परीक्षण किया गया, सबसे प्रथम बार जब एटम बम विस्फोट टेस्ट किया गया, तब पहली बार मनुष्य ने इतना बड़ा विनाश देखा। जो ऊर्जा निकली और जो प्रकाश निकला वो इतना भयावह था के सब लोग कांप उठे। तो उस दौरान, उसके तुरंत बाद ही जो ओपेनहाइमर है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, टीवी इंटरव्यू, अगर आपको देखना है तो आप ढूंढ सकते हैं गूगल में, ओपेनहाइमर एटम बॉम्ब करके ढूंढ सकते हैं, या ओपेनहाइमर कोट ऑन भगवद गीता, आपको दिख जाएगा वो वीडियो, वो क्लिप है अभी भी। सो उन्होंने कहा कि जब ये मैंने विस्फोट देखा, हम सब ने देखा, तो हम सब कांप उठे, और मुझे भगवद गीता का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक याद आया। लगाओ 32वां श्लोक, कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। अर्जुन ने जब विराट रूप देखा भगवान का, तो भयभीत हो गया, पूछा कि भाई आप कौन है। तब भगवान बोलते हैं ये श्लोक, कालो अस्मि, आई एम टाइम, कम टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मैं समय हूं। हम पढ़ते ना, भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं, तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। सो ओपेनहाइमर ने कहा कि मुझे ये श्लोक याद आ गया भगवद गीता का, जहां पे भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाए और कहे कि मैं काल हूं, आई एम टाइम विच डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। तो ये जो विनाश का जो दृश्य देखा उन्होंने, तो उनको ये भगवद गीता का श्लोक याद आया। तो हमको क्या जानने मिलता है कि विश्व के प्रमुख लोग भगवद गीता पढ़ते रहे हैं और आज भी भगवद गीता जो भी बुद्धिमान व्यक्ति लोग हैं संसार में, उन सभी का प्रेरणा स्रोत रही है और लोग इनसे शिक्षाएं प्राप्त करते रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि जब भी विषम परिस्थिति मुझे when I face difficult situation, जब कोई विषम परिस्थिति का सामना मैं करता हूं तो मुझे भगवद गीता राह दिखाती है। तो हम देख रहे हैं कि भगवद गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो अगर हम इसको अपनाएंगे जीवन में तो बड़े लाभान्वित होंगे। तो भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जो ये 11वां अध्याय देख रहे हैं हम, ये भगवद गीता का मिडल सेक्शन में आता है। भगवद गीता में 3 मुख्य विभाग है 6-6 अध्याय के, पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय, अंतिम के 6 अध्याय। तो जो बीच के 6 अध्याय है इसे भगवद गीता का सार कहा जाता है, द एसेंस ऑफ भगवद गीता। इसमें भगवान परम गुह्य ज्ञान बताए हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान को भोग लगने के लिए पट बंद हुए हैं, 8:30 बजे वापस पट खुलेंगे और भगवान का शयन आरती होगा। तब तक आप गीता का प्रवचन का लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जो बीच के 6 अध्याय हैं वो परम गुह्य ज्ञान है। गीता का सार जो है वो इन 6 अध्यायों में है, 7 से लेके 12। तो 6 अध्याय के अंत में भगवान कहे कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समय युक्त तमोमता। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मेरा स्मरण करता है, अपने अंतकरण में मेरा स्मरण करता है नित्य रूप से। तो ये श्लोक से भगवान 6 अध्याय का अंत करते हैं और 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मेरा स्मरण कैसे कर पाओगे तुम। भगवान वो ज्ञान देते हैं, द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, 7 चैप्टर का टॉपिक है, टाइटल है। भगवान अपने बारे में ज्ञान देते हैं, भगवान की शक्तियां क्या है, भगवान की स्थिति क्या है और कौन भगवान के शरणागत होता है, कौन भगवान के शरणागत नहीं होता है। विविध प्रकार से भगवान अपने बारे में ज्ञान देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी स्मृति भगवान के प्रति बनती है, हम भगवान को याद कर पाए, इसीलिए 7वां अध्याय भगवान ने कहा। 8वें अध्याय में भगवान ने बताया कि अंत समय में हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं अंत समय में, और ये जन्म के बाद जीवात्मा का नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट गति क्या है, कहाँ जाएगा जीवात्मा, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको अगर कहीं जाना है तो हमारे गंतव्य का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? मान लो आप निकल गए घर से, कार में बैठ गए, चला रहे हैं गाड़ी, कोई पूछे आपसे कहाँ जा रहे हो, मतलब पता नहीं। तो ऐसी हमारी स्थिति है इस जीवन में, जीवन के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है पता ही नहीं है ना। तो भगवान गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं। 9वें अध्याय में भगवान आठवें अध्याय में भगवान कहे 22वें श्लोक में कि जो अनन्य भक्ति करता है वो मुझको प्राप्त कर सकता है, अनन्य भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अभी ये अनन्य भक्ति है क्या, उसका विस्तार भगवान 9वें अध्याय में किए, जिसका टाइटल है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। उसमें भगवान भक्ति का पूरा सार बताते हैं, कैसे भगवान का अनन्य भक्त बना जाए। और 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ा, कैसे बढ़े, कैसे बढ़ेगा जब भगवान के बारे में सुनेंगे। जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में सुनेंगे, उनकी महानता के बारे में सुनेंगे, तब भगवान के प्रति लगाव और स्नेह बढ़ेगा। तो लव समवन वी शुड नो सम दैट पर्सन, राइट। अगर किसी को प्रेम करना तो उसको जानना पड़ता है ना, कौन है वो व्यक्ति, कौन है। तो भगवान अपने बारे में बताते हैं कि वो कौन है और उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं 10वें अध्याय में, ताकि हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़े। और इसी दौरान लास्ट श्लोक में भगवान अपने शक्तियों का संक्षेप में विस्तार, संक्षेप में समझा रहे थे, ब्रीफली समझा रहे थे, जस्ट ऐसे मेंशन कर रहे थे कि ये शक्तियां हैं मेरी। फिर एंड में बोलते हैं भगवान, अथवा बहुने तेनेव किम ज्ञातेन च अर्जुन विष्टव्यहम इदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। तो बोले अभी मैं क्या बताऊं, कितना बताऊं, सार में इतना जान लो कि पूरा जो जगत है मेरे एक अंश में स्थित है, मैं इस सारे जगत में व्याप्त हूं और ये सारे जगत को धारण किए रखा हूं, ये सार में जान लो, ये मेरी शक्तियां हैं कि पूरा समस्त भौतिक ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड मेरी एक अंश, 1/4 ऑफ द एनर्जी ऑफ माइंड में स्थित है। तो जब भगवान ने यह कहा तो अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की कि आप कैसे व्याप्त है पूरे जगत में, आप कैसे धारण किए हुए हैं पूरे जगत को, थोड़ा विस्तार में बताओ, आपका वो विराट रूप दिखाओ। तब भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट रूप बताएंगे। तो ये है जर्नी 7वें से 11वें अध्याय तक की। और 12वें अध्याय में भी भगवान भक्ति का ज्ञान देंगे कि भक्ति में सेवा कैसे की जाती है। समझ गए हम भगवान का पोजीशन क्या है, अभी सेवा में कैसे लगना है, तो वो 12वें अध्याय में बने। तो 7 से 12 ये भगवद गीता का इसेंस है, द मोस्ट इसेंशियल पार्ट, द सार है गीता का। तो हम देखते हैं 11वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कहते हैं मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वया उक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन कहते हैं मद अनुग्रहाय परमम, भगवान आपने मेरे को जो ज्ञान दिया, अध्यात्म ज्ञान दिया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं, आपने मेरे पे बहुत अनुग्रह किया है। तो यहां पे अर्जुन का भाव देखने को मिलता है कि उनका क्या भाव है कृष्ण के प्रति, किस भाव से हमको भगवान के प्रति जाना, भगवान के समक्ष जाना चाहिए। भगवान का सिंपल प्रिंसिपल है, भगवान कहते हैं गीता में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य परत सर्वशः। सो जो जिस भाव से मेरे पास आएगा उसको मैं वैसा रेसिप्रोकेट करूंगा, उसको मैं वैसा आदान प्रदान करूंगा। तो अगर कोई 10% भगवान का शरणागत होता है तो भगवान 10% उसको अपने आप को रिवील करते हैं, या अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने कृपा बताते हैं 10%, अगर आप 20% से भगवान के पास जाएंगे तो भगवान 20% रिवील करेंगे, अगर आप 100% से जाएंगे फुल सरेंडर तो भगवान पूर्ण प्रकाशित करेंगे अपने आप को। तो हम देखते हैं अर्जुन का कितना अनुकूल भाव है, ग्रेटिट्यूड जिसको बोलते हैं, अनुग्रह का भाव है उनका कि भगवान आपने मेरे पे बहुत अनुग्रह किया। हम देखते हैं महाभारत का जब युद्ध होना था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास जाते हैं कृष्ण से सहायता मांगने के लिए, क्योंकि कृष्ण दोनों से संबंधित है तो दोनों जन जाते हैं कृष्ण से युद्ध में सपोर्ट मांगने के लिए। तो दुर्योधन पहले पहुंचता है और कृष्ण के समक्ष खड़े हो जाते हैं, कृष्ण तभी विश्राम करते होते हैं और कृष्ण के पास जाके ऐसे छाती तान के खड़ा हो जाता है वो, और अर्जुन बाद में आते हैं और कृष्ण के चरण के उधर खड़े रहते हैं। कृष्ण जब उठते हैं तो पहले किसकी ओर देखते हैं, अर्जुन की ओर देखते हैं पहले, जो चरणों की ओर खड़ा है, और फिर दुर्योधन को भी देखते हैं और दोनों का स्वागत करते हैं और पूछते हैं भाई क्या कारण है आप दोनों का यहाँ पधारने का। तो दोनों जन कहते हैं कि अभी युद्ध होने वाला है तो आपका समर्थन चाहिए हमको। तो कृष्ण एक्चुअली पहले कहते हैं कि अभी तुम दोनों आए हो मेरे पास तो पहले याचना कौन करेगा, पहला रिक्वेस्ट कौन रखेगा। तो दुर्योधन बोला मैं रखूंगा ना, मैं पहले आया। तो भगवान बोले नहीं अर्जुन छोटा है, उसको पहले चांस दो। तो अर्जुन को पहले चांस दिया गया, दुर्योधन बहुत घबरा गया कि क्या होगा अभी। तो कृष्ण ने कहा कि देखो क्योंकि तुम दोनों मेरे से संबंधित हो तो मैं तुम दोनों को कुछ ना कुछ हेल्प दूंगा। मेरे पास तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक मुझे स्वीकार कर सकता है युद्ध में, मैं उसके साइड पे रहूंगा पर लड़ूंगा नहीं, केवल एडवाइस करूंगा, केवल उनको सलाह दूंगा, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है। नारायणी सेना बहुत पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल आर्मी। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, आपको चाहिए तो मैं केवल अकेला आपके साइड में रह सकता हूं एज अ सलाहकार, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है आप मेरी नारायणी सेना को चुन सकते हैं। तो क्या लेंगे आप? तो अर्जुन को पहले मौका दिया गया। तो अर्जुन तो बिना हिचके वो तुरंत बोला भगवान मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन मन में बोला ये अर्जुन कितना मूर्ख है, कृष्ण के प्रति भावुकता है इसके मन में पर इसको कुछ इसको कुछ समझ है नहीं, मूर्ख है ये। तो पर बाहर से दुर्योधन ऐसा मुंह बना रहा था जैसे वो बहुत दुखी हो गया, उसको चाहिए थे कृष्ण। तो वो बाद में वो जब उसका टर्न आया, जब उसकी बारी आई तो वो बोलता है अभी क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो ठीक है आपकी नारायणी सेना दे दो और आपका बहुत धन्यवाद नमस्ते करके चला गया। कि कुछ विचार बदल नहीं जाए तो मैं निकल लेता हूं। तो ये डिफरेंस है। भगवान ने पूछा कि भाई अर्जुन तुम ऐसे क्यों किए, मेरे को क्यों चुने, मैं तो कुछ लड़ने वाला हूं नहीं, तो मैं अकेला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के क्या करूंगा तुम्हारे लिए। तो वो बोले कि भगवान वो सब मुझे नहीं मालूम, हार जीत मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस आप चाहिए, आप अगर साथ में रहेंगे तो जो भी हो जाए देख लेंगे। भगवत गीता में भी जब शुरुआत में पहले अध्याय में हम देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो जाता है, धृतराष्ट्र पहले श्लोक में पूछते हैं कि क्या हुआ, दोनों आर्मी आमने सामने है तो क्या हुआ। तो संजय उनको बताते हैं कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री देते हैं वो, तो बताते हैं कि दुर्योधन जब देखते हैं पांडवों की सेना तो थोड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपर्टली उनका सेना ऐसे डिजाइन किया था धृष्टद्युम्न ने। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं उनको, ओ आचार्य जी देखिए सामने जो आर्मी है, जो सेना है, उनमें कौन कौन लोग हैं। तो वो बहुत नाम गिनाता है, अत्र शूरो महेश्वास भीमा अर्जुन समायुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो बोलता है बहुत सारे योद्धा गिनाता है वो अर्जुन, वो बोलता है देखो अर्जुन है, भीम है, फिर युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, ऐसे बहुत नाम गिनाता है वो, और बोलता है कि ये लोग सब भीम और अर्जुन की तरह ही हैं, इतने शक्तिशाली हैं। पर इंटरेस्टिंगली वो सबके नाम गिनाता है पर एक जन को भूल जाता है, किसको मालूम? कृष्ण को। इतने सबको देख लिया वो, पर वो नहीं देख रहा कि कृष्ण भी बैठे हैं वहां पे। वो समझता है ये क्या करेगा, ये क्या कर लेगा, ये तो बिना शस्त्र के हैं, तो गिनता भी नहीं है। तो ये है दुर्योधन भाव, भगवान की शक्ति का भोग करने का भाव, भगवान का मैं कैसे इस्तेमाल करूं अपने हित के लिए, है ना। तो ये है दुर्योधन का भाव। अर्जुन का क्या भाव है? मैं भगवान का सेवा कैसे करूं, भगवान के किस में खुश होंगे वो कार्य करूं, यह है सेवा भाव अर्जुन का। और दुर्योधन का है भोग भाव। ये डिफरेंस है हमारे एटीट्यूड में, जो एटीट्यूड से हम भगवान को अप्रोच करेंगे उस प्रकार से भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो भगवान तो जानते हैं सब कुछ, तो बता दिए उसको कि व्हाट डिफरेंस इट मेक्स व्हेन यू हैव द कृष्णा फैक्टर इन लाइफ। जो कृष्णा फैक्टर है, हम जीवन में सोचते हैं कि भाई ये सारी चीजें मेरे को बचा लेंगी, मेरा धन संपत्ति, पुलिस, कोर्ट, और मेरा जो एजुकेशन, जो भी है एसेट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे को सब, ये लोग सब मेरे को बचा लेंगे, जीवन में मेरी सुरक्षा करेंगे। पर इनको क्या कहा गया है? असत सैन्य। असत सैन्य मतलब जब वास्तव समय आएगा, इन द टाइम ऑफ रियल डिफिकल्टीज एंड अल्टीमेटली एट डेथ, जब वास्तव समय आएगा विषम परिस्थिति का और खास करके मृत्यु का समय, ये सारी सेना जो हमारी है, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी सुरक्षा करेगी, वो ढेर हो जाएगी। केवल एक चीज हमको बचा सकती है इन विषम परिस्थिति में, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ये कृष्णा फैक्टर हम भूल जाते हैं जीवन में, हम सोचते हैं कि बाकी सब अरेंजमेंट कर लूं तो हो जाएगा, और ये एक मेन फैक्टर को भूल जाते हैं। तो जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, उनको हमको समझना है कि ये एक्चुअली अगर ये मेरे जीवन में आ जाएंगे तब विजय निश्चित है, है ना, तब जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। असली विजय क्या है? अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण करना, खासकर अंत समय में। अंत समय में स्मरण ऐसे ही नहीं होगा, उसका अभ्यास करना होगा। और जब हम अंत समय में भगवान को स्मरण करेंगे तब ये संसार का जन्म मृत्यु जो साइकिल है उसको हम, उससे हम बाहर निकल जाएंगे और अपने शाश्वत धाम, हम जहां से आए हैं, वैकुंठ जगत जो हमारा असली घर है, वहां हम जाएंगे। तो यहां पे अर्जुन का भाव देखा गया है कि किस भाव से वो भगवान को भज रहे हैं, भगवान को संबोधित कर रहे हैं, और कैसे अनुग्रह का भाव रखते हैं वो। फिर दूसरे श्लोक में, आज के जो श्लोक में हम देखते हैं, भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमल पत्राक्ष महात्म्य भी चाव्ययम्। भवाप्यो हि भूतानां, भगवान समस्त जगत के स्रोत हैं, सोर्स हैं, और समस्त जगत का विनाश भी करते हैं। सो अगर व्यक्ति ये जान लेता है कि वास्तव वस्तु भगवान है, जगत प्रकट होता है अप्रकट होता है, सब कुछ इस जगत में नश्वर है, वास्तव वस्तु भगवान है, भागवतम में आता है वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र, तो वास्तव वस्तु द रियलिटी इज कृष्णा। तो ये जब हम समझ लेंगे भवाप्यो ही भूतानाम कि भगवान इस जगत के नियंता है और सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, भगवान सभी कारणों के मूल कारण है, तो हम समझेंगे कि जीवन में वास्तव में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, भगवान या एक्सेट्रा इतरा मतलब अदर्स। तो हमारा प्रायोरिटी सेट हो जाएगा जीवन में, वी वांट कृष्णा और वी वांट द अदर्स। त्वत्तः कमल पत्राक्ष, भगवान को संबोधित कर रहे हैं कमल पत्राक्ष, भगवान के जो अक्ष हैं, नेत्र हैं, कमल पत्र के समान बहुत सुंदर हैं। हम सुबह प्रार्थना करते हैं, वेणुम क्वनंतम अरविंद दलाय ताक्षम बरहावतम सम असित सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजन। तो भगवान का दिव्य स्वरूप का वर्णन, इतनी अगाध महिमा गाते हैं वेद भगवान की सुंदरता के बारे में। हम विश्व की सुंदर वस्तुओं में अपना चित दे बैठते हैं, समझते हैं कि ये बहुत सुंदर वस्तु है, पर सुंदरता का जो सोर्स है, स्रोत है, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान का दिव्य रूप इतना सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प कहते हैं कामदेव को, कामदेव भगवान के सामने आते हैं मूर्छित हो जाते हैं, ये भगवान की सुंदरता है। तो ये जब हम भगवान की महात्म्य के बारे में सुनते हैं तो भगवान के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ जाता है, भगवान के प्रति हमारा लगाव प्रेम बढ़ता है। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, और ये है जीवन की सफलता। और इसको बहुत ही सहजता से करने के लिए, भगवान का स्मरण बहुत सहजता से करने के लिए क्या उपाय है, शास्त्र बताते हैं सबसे पावरफुल तरीका। सबसे पावरफुल तरीका है भगवान का नाम लेना। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो भगवान का दिव्य नाम इतना पावरफुल है कि हमारे जो भी कमियां हैं, हमारे अंदर हृदय में बहुत सारी गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारी कमियां नष्ट हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी जब हम भगवान का नाम लेंगे। भगवान का दिव्य नाम शास्त्र बहुत महिमा गाते हैं, और भगवान भी कहते हैं गीता में, सततम कीर्तयंतो माम, हमेशा मेरा नाम लो। तो भगवान का दिव्य नाम और भगवद गीता का पठन मंदिर में भक्तों का संग, भगवान के दिव्य दर्शन, ये सबसे हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमको भगवान की स्मृति बनी रहेगी। हरे कृष्णा। तो हम सब भगवान का नाम लेंगे, एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के बोलिए भगवान का नाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
वंदेहं।